سورت الانبیاء. انبیاء کرام کے سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی بات سے. اب یہاں سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ سورت انبیاء میں انبیاء کرام کے جو قصے آئیں گے تو یہ ترتیب زمانی کے اعتبار سے نہیں آئیں گے, یعنی جس اعتبار سے انبیاء کرام دنیا میں آئے اس سے نہیں آئیں گے. حالانکہ اس کے برعکس سورہ ہود میں, سورت یونس میں, سورت الاعراف میں عموماً ترتیب کے اعتبار سے ہی قصے آئے تھے, لیکن یہاں آپ کو تھوڑا سا انداز فرق دکھے گا. چونکہ ہر سورت کا ایک مزاج ہوتا ہے, اس کے مطابق ہی بات ہوتی ہے. حضرت موسیٰ اور ہارون کا جو قصہ تھا اس کے اندر اگر ہم نے غور کیا ہو, جو بالکل پچھلے سبق کی آخری آیات تھی, اسی کو بنیاد بناتے ہوئے ہم آگے حضرت ابراہیم کا قصہ شروع کریں گے. ہم نے دیکھا کہ تین چیزوں کا تذکرہ تھا موسیٰ اور ہارون کے قصے میں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ. اس آیت میں ہم دیکھ چکے کہ فرقان اور پھر ضیاء اور ذکر کی بات تھی, یعنی ذکرہ. یہ ہیں وہ تین چیزیں جو کسی بھی نبی کی دعوت کو ماننے والوں کے لیے لازم ہوتی ہیں. سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات سے دوچار تھے وہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت ملتے جلتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو نہ ماننے کے لیے لوگوں نے اس پیغام کا انکار کیا. کسی بھی نبی کے ذریعے سے جب بھی کوئی پیغام ہدایت آتا ہے تو اس کے لیے یہ بات لازم ہوتی ہے کہ وہ اس کتاب کے ساتھ گہرا تعلق رکھے. فرقان, ضیاء اور ذکرہ, ان تینوں کو اوپر نیچے لکھتے جائیں. فرقان کیا ہوتا ہے؟ کہ بندے کو نبی کی بات سمجھ آنے لگے. کل نبی کی بات تھی, آج قرآن بتانے والے کی بات کہہ لیں, حق بیان کرنے والے کی بات کہہ لیں. یہ بنیادی چیز ہوتی ہے, کیونکہ جب کسی کو بات بتانے والے کی بات سمجھ ہی نہیں آتی نا, تو پھر اگلی باتیں تو پیچھے رہ جاتی ہیں. اور پھر یہ جس کے اندر آ جاتا ہے نا, اس کا دل اس کو بتاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اس کے لیے ٹارچ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ امیجن کریں کہ فرقان اس کمرے میں رکھی ہوئی کوئی چیز ہے, صرف اپنے امیجنیشن میں لے آئیں. آپ کو فرقان ڈھونڈنی ہے, کمرے میں اندھیرا ہے, کیسے ڈھونڈیں گے؟ کوئی ٹارچ چاہیے نا. تو اس کے لیے ضیاء کی ضرورت ہے. ضیاء روشنی کو کہتے ہیں نا, چمک والی چیز کو, ٹارچ ہے, کوئی فلیش لائٹ ہے. اب فلیش لائٹ کی ضرورت ہے. اب آپ کو فلیش لائٹ کیسے ملی؟ اس کو آپ امیجن کریں کہ جیسے افشاں چمکتی ہوئی دیکھی ہو اپنے اندھیرے میں. کبھی کچھ لوگ گلیٹر کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں. تھوڑی سی بھی کسی چیز کے ساتھ لگ جاتی ہے نا, تو جو اس کے پاس سے گزر جاتا ہے اس کو بھی لگ جاتی ہے. قرآن پاک کی روشنی جب کسی انسان کی زندگی میں آتی ہے نا, تو وہ خود اکیلا ہی چمکتا نہیں ہے, اپنے ارد گرد والوں کو بھی چمکاتا ہے. لیکن جو ہی آپ اس افشاں والے کپڑے کو اتار دیں, دو چار دن استعمال نہ کریں, تو کیا ہوتا ہے؟ پھر ختم ہو جاتی ہے. یہی ہے قرآن پاک اور ہر نبی کی دعوت کا ایک خوبصورت نقطہ, کہ جب تک اس کتاب کے ساتھ تعلق جڑا رہتا ہے نا, تو افشاں کی طرح, چمکتی ہوئی گلیٹر کی طرح اپنے ساتھ بھی چپکتی ہے, دوسروں کے ساتھ بھی چپکتی ہے. اور اس کی روشنی میں پھر قرآن ذکر بنتا ہے. بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہمیں اپنے ارد گرد دکھتے ہیں, لیکن اس کے ذکر بننے کے اندر شرط ایسی ہے کہ جب تک آپ اس کو صحیح معنوں میں نصیحت کے لیے نہیں سنتے نا, بات نہیں بنتی. اب اگر آپ یوں سمجھیں کہ ذکرہ اور ضیاء یہ کسی بھی سرکٹ کی دو تارے ہیں, کوئی بھی پلگ جو آپ لگاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر دو تارے ہوتی ہیں. ان دونوں میں سے ایک تار جب اترا ہوا ہوتا ہے نا, تو اصل کنیکشن نہیں جڑتا. بالکل اسی طرح قرآن کے ساتھ تعلق کے باوجود, پڑھنے اور پڑھانے کے باوجود بھی فرقان کب نہیں ملتی؟ جب یا تو ضیاء نہیں بنا قرآن, یا ذکرہ نہیں بنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ تھوڑی سی سٹبن تھی, زیادہ ہی کچھ بات کو نہ سمجھنے والی تھی. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کا تذکرہ فرما دیا, اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ دیکھیے کہ آپ کی جو قوم ہے وہ آپ کی بات نہیں مان رہی, تو غم نہ کریں. موسیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا. اب یہاں سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک فرد کی کہانی شروع ہو رہی ہے. جہاں بھی لفظ ابراہیم آئے تو فوراً سمجھ لیا کریں کہ تھا ایک فرد، لیکن اللہ نے کام اس سے ایک امت کا کروایا. اب امت کا کام جس نے کیا، اس کو حالات بھی ویسے ہی پیش آئے ہوں گے. اگر اعزازات زیادہ ہوتے ہیں تو پھر مشکلات بھی زیادہ ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ 10 لوگ مل کے ایک کام کو کریں، لیکن اگر ایک یا دو سے کام کو کریں، ہاں کل کے وقت میں آنے والے دنوں میں اس ایک کی قدر بہت ہوگی، لیکن اس کے دور میں اس ایک کو مسائل بھی تو 10 گنا زیادہ سہنے پڑیں گے نا. یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انصاف کہ جو اللہ کے پیغام کے راستے میں جتنی مشکلات سہتا ہے اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور یقیناً ہم نے عطا کی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی دانائی اس سے بھی پہلے. کس سے پہلے؟ موسیٰ اور ہارون سے پہلے، جس کا تذکرہ پچھلی آیت میں آ گیا. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے. کتنا پیارا ٹائٹل ہے، کتنا پیارا تعارف کروایا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو رشد عطا کی. اور رشد پیچھے ہم نے کئی جگہ دیکھا کہ رشد ایک خاص قسم کی انڈرسٹینڈنگ کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بڑی پیاری دعا میں ہمیں سکھا دیا کہ اللہم الہمنی رشدی وعزنی من شر نفسی، اے اللہ مجھے اپنے پاس سے رشد دے، وہ بھلائی دے جو تیری طرف سے الہام کی جائے، اور مجھے میرے نفس کی شرارتوں سے بچا. اس دعا کو اگر ہم سامنے رکھیں تو رشد کا بڑا ہی خوبصورت معنی سمجھ میں آتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ رشد ہے نفس کی شرارتوں پہ غلبہ پانے کا نام. 13 پارے کے شروع میں ہم پڑھ چکے وما ابری نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء، کہ اپنی اصل کے اعتبار سے نفس برائی کی دعوت دیتا ہے، لیکن وہ خوش قسمت انسان ہے جو اپنے نفس کے فتنوں پہ قابو پاتے ہوئے اپنی فطرت کو مسخ ہونے سے بچا لے. تو ہر لحاظ میں ہر انسان کی رشد بالکل فرق ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں رشد کیسے تھی؟ وہ اس طرح سے تھی کہ کسی کی بڑائی، کسی کی کثرت ان کو حق بات کہنے سے روک نہ سکی، پیئر پریشر کا شکار نہ ہوئے، امپریس نہ ہوئے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، اس طرح سے نہ کیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ رشد وہ بصیرت اور دانش مندی ہے جس سے گمراہ ماحول میں نعرہ توحید بلند کرنے کی جرت اور اس کا سلیقہ اور اس کی راہ میں حائل ہونے والی ساری مصیبتوں کو جھیلنے کا حوصلہ اور اللہ کی ذات پر توکل کا صحیح جذبہ پیدا ہو جائے. بات بڑی لمبی کہہ دی میں نے، لیکن میں دہراؤں گی، اس میں ہم سب کے مسائل کا حل ہے. ہر دور میں ہر بندے کو اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنے معاشرے کے اندر حق بات کہنے کے راستے میں جتنے پرابلمز آتے ہیں نا، ان سب کا ایک جواب ہے کہ بندہ اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہم الہمنی رشدی. یقین کریں جب تک یہ رشد نہیں آئے گا نا، تھکے ہی کھاتے رہیں گے. اس سے پوچھ، ایک یہ کہے گا، دوسرے سے پوچھ، دوسرا کیا کہے گا. پچھلی آیتوں میں جو تین چیزیں تھیں نا، فرقان، دیا اور ذکرہ، رشد اصل میں اسی کا آخری حصہ ہوتی ہے. جتنا آپ کا دل قرآن کے لیے کھلے گا، روشنی اس کی آپ کی زندگی کو منور کرے گی. جتنا قرآن کو ایک نصیحت کے لیے سنیں گے، اتنا فرقان ملے گا. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرقان ایک وقت آتا ہے کہ رشد میں ڈھل جاتا ہے. اصحاب کہف نے بھی کچھ اسی قسم کی دعا کی تھی، انہوں نے رشدہ کا لفظ بولا تھا. تو رشد کی جو میں نے ایک بڑی جامع تعریف بولی، میں دہراؤں گی اس سوچ کے ساتھ کہ آپ لوگ لکھیں گے، وہ بصیرت اور دانش مندی جس سے گمراہ ماحول میں نعرہ توحید بلند کرنے کی جرت. اب نعرہ توحید کو آپ اپنے حالات کے مطابق کہہ لیں، اللہ کی بات، اور اس کا سلیقہ، کیونکہ بہت سارے لوگوں میں جرت بہت ہوتی ہے، سلیقہ نہیں آتا بات کرنے کا، سلیقہ، اور اس کی راہ میں حائل ہونے والی ساری مصیبتوں کو جھیلنے کا حوصلہ. क्योंकि बाज़ दफ़ा फिर हम मुसीबतों के आगे हार मान चुके होते हैं। सलीका भी आता है, जुरत भी बड़ी है, बड़े डंके की चोट पे कह देते हैं कि आज के बाद बस कोई मुझे ना रोके, मैं ये काम करके रहूँगी। लेकिन बाज़ दफ़ा सलीके से नहीं कहते, चले सलीके से कह दिया तो जब उसके रास्ते में मुश्किलात आई तो परेशान होकर छोड़ दिया, नहीं, फिर मुसीबतों को झेलने का हौसला और आखिर में अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल। फिर बंदा ये ना सोचे कि मेरी इस दावत से मेरे ऊपर होगा क्या, मेरे बच्चों के रिश्ते होंगे कि नहीं, ख़ानदान मुझे छोड़ ना दे, बिरादरी छोड़ ना दे, फिर पूरे का पूरा बंदा अल्लाह के हवाले ख़ुद को कर देता है कि अब है तो है, नहीं है तो भी नहीं, क्योंकि हसबी अल्लाह, मुझे मेरा रब काफ़ी है। अल्लाह कहते हैं जिसको हम रुश्द दे दें, देखिए रुश्द हू उसकी रुश्द, हम समझते हैं कि रुश्द किसी और की होती है या अल्लाह की तरफ से आती, नहीं, हर बंदे की रुश्द फ़र्क होती है। अगर इस वक्त बात सुनने वाले सैकड़ों हैं ना, तो 100 किस्म की रुश्द दरकार है इस बात को अमल कर मिलाने के लिए। जैसे चावल पकाने के तरीके हर एक के एक जैसे होने के बावजूद टेस्ट फ़र्क होते हैं ना, इसी तरह याद रखें ज़िंदगी में इस कुरान को अमली तौर पर लाना हर बंदे का फ़र्क होता है। आप कभी भी जब फतावा की बुक्स पढ़ते हैं आप हैरान रह जाते हैं कि वही एक मसला 10 लोगों ने पूछा होता है तो उसके जवाब 10 मुख्तलिफ तरह से दिए होते हैं मुफ्ती ने। क्यों? क्योंकि हर बंदे के हालात के मुताबिक है। इसी तरह एक ही ख्वाब 10 किस्म के लोग देख लें, उनकी 10 मुख्तलिफ ताबीरें आएंगी, क्योंकि हर बंदे के हालात मुख्तलिफ होते हैं। अल्लाह ताला ने इब्राहिम को एक ऐसे समाशरे में काम के लिए चुना जहाँ सब की फितरत मसख हो चुकी थी। गैर तो गैर अपने बाप के आगे वो मजबूर हो सकते थे, कॉम्प्रोमाइजिंग हो सकते थे, अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूर कहकर उन्हीं की हाँ में हाँ मिला सकते थे। बादशाह का बहुत बड़ा एक समझे के दरबारी था। हम सूरत अल अराफ में डिटेल से बात कर चुके हैं कि इब्राहिम उस दौर के एक सुपर पावर के दौर में पैदा होने वाले लोग में से थे, यानी बहुत माली तौर पे मुस्तहकम ख़ानदान था। लेकिन जिसको रुश्त मिल जाती है ना, उसको फिर कोठियाँ, बंगले, गाड़ियाँ, घर, सोने, जेवर ये माइल नहीं करते। का वकुन नबी आलमीन, और हम उनको भी जानते थे, किनको? मूसा और हारून को भी जानते थे, और हम हर एक उसको जानते हैं जो अल्लाह के रास्ते में मुश्किल सह रहा होता है। अल्लाह ताला ऐसे मामलात को देते हैं। बस ने मिन कबल से मुराद नबुवत से कबल भी कहा है। एक तो मैंने आपको बता दिया ना कि मूसा और हारून से कबल, बस कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको नबुवत से पहले ही होशमंदी दे दी थी। हम जानते हैं कि अंबिया कराम को नबुवत जो थी 40 साल के अरसे में मिलती है, लेकिन बचपन से ही अल्लाह ताला इस्मत अंबिया के ज़रिए से उनको बिल्कुल भी मुआशरे के रंग में रंगने नहीं देते। अगर आज हम इस बात को अपने ऊपर लेके देखें तो आज हमारे पास कौन सा दीन है? बुज़ुर्गों की रिवायात, अक़वाले ज़रीम वाला आज हमारा दीन है। आज भी हमें अल्लाह ताला से रुश्त मांगने की ज़रूरत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिस तरह अपनी कौम को तबलीग की तदरीज के साथ, तो जब भी किसी नबी के हालात आए तो अपने वो नोट्स जो पिछली सूरतों में आप अंबिया कराम के बारे में पढ़ चुके होते हैं, एक दफ़ा उसको घर से दोहराया करें, तो बात को मज़ीद अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं कि क्या अंदाज़ था इब्राहीम का दावत तबलीग का, कि कैसे तदरीजन बात किया करते थे, मजाक का अंदाज़ भी था, और बात करते हुए बिल्कुल नहीं झिझकते थे कि जो बात कही जा रही है उसका कोई क्या रिएक्शन देगा। अब अल्लाह ताला आगे एक टॉक शो की तरह से बात पेश करते हैं। फीलिंग ऐसे ही आती हैं कि हज़रत इब्राहीम है और उनके साथ उनकी कौम है और एक मुकालमा चल रहा है। इस काल अली अबी ही, याद करो जबकि उसने कहा अपने बाप से। देखिए सबसे पहले बाप को कहा, बात घर से शुरू होती है। ली अबी ही, लाम जो होता है ये इख्तिसास के लिए ख़ास किया गया इस बात को, यानी बाप को भी कहा, व कौमी ही और अपनी कौम को भी कहा। मा हाज़िह तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, ये क्या हैं मूर्तियाँ जिनकी पूजा पाठ पर आप बैठे हुए हो? बुतों की तहकीर के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, मा हाज़िह, क्या हैं ये, मैं तो इनको कुछ नहीं समझता। यानी अंदाज़ क्या है? शऊर को बेदार करने वाला। तमासील जो है तिमसाल की जमा, मीम सालाम इसका रूट है, मिसल कहते हैं, मिसाल उर्दू में भी हम ये बोलते हैं। असल किसी चीज़ की हूबहू नकल, इसको कहते हैं तमसील। जैसे पत्थर का मुजस्मा, कागज़ या दीवार वगैरह पर किसी की तस्वीर हो। अब ये कौन सी मूर्तियाँ थीं? बास कहते हैं कि कौम इब्राहिम ने सितारों की मूर्तियाँ बना रखी थी, बास कहते हैं अपने बड़ों की तस्वीरें बना रखी थी, और बास कहते हैं कि दरख्तों और इस तरह की बेजान चीज़ों की तस्वीरें थी। लेकिन अपने लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि कुछ बुत थे जो वो बना के बैठे हुए थे। अन तुम लहा आकिफून, तुम उसके लिए बैठने वाले हो। आकिफून जो है ये आकिफ की जमा है। अकूफ कहते हैं यकसुई और इन हेमाक से कहीं बैठना, ख़ास तौर पर इबादत के लिए। यही जब बाब इफ्तियाल में आता है तो एतिकाफ बन जाता है, जो आज इस्लाम का एक रिचुअल है, ख़ास तौर पर रमज़ान के नाते से इसकी बात आती है। और इसम फ़ाइल का ये सीगा है, पकड़ कर बैठने वाला, यकसुई से बैठना, यानी इस तरह उन तस्वीरों को देखने के लिए बैठते थे कि हिलते ही नहीं थे। चलिए, वो तो कुछ तस्वीरों को देखने के लिए यूं बैठ जाते थे कि उनको बीच में कोई डिस्टर्ब भी ना करे। क्या आज भी लोग कुछ बैठते हैं? कभी किसी को टीवी देखते हुए देखा करें? बिल्कुल, अन तुम लहा के फ़ोन की कैफियत होती है, बुलाएं होश ही नहीं, आवाज़ से होश नहीं, फ़ोन बज रहा है होश नहीं, बच्चा रो रहा है होश नहीं, कहते चुप 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 सब बाहर चले जाओ क्योंकि हम इन मूर्तियों का इतकाफ़ करने लगे हैं। कितने फोकस्ड होके लोग आज भी एंटरटेनमेंट के सामान देखने के लिए बैठते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि उनके बुत उस दौर के थे, तो आज के मुसलमानों के भी बुत कुछ कम नहीं है। इतनी यकसुई तो नमाज़ पढ़ते हुए नहीं करते जितनी टीवी देखते या मैच देखते हुए या ख़बरें सुनते हुए होने लगती है। तो हर दौर में शिर्क रंग बदल के आता है। अगर कल कोई बुतों के सामने बैठा रहता था और अल्लाह की बात नहीं सुनता था, तो याद रखिए कि अगर आज अजान पे अजान हो रही हो, नमाज़ें जा रही हों और लोग सिर्फ मैच ही देखने पे बैठे हों, तो वो भी अंतुम लहा आकिफून वाली कैफियत होती है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। क्यों देख रहे थे, क्यों कर रहे थे? कालू वजतना आबा अना लहा आबिदीन, कहने लगे हमने तो अपने बाप दादा को पाया कि वो इनके पुजारी थे। उन्होंने भी बाप दादा को ही बुतों की पूजा करते पाया। आज आप देख लें, हमारे यहाँ एक बड़ा मारूफ जुमला कहते हैं, टीवी घर का फ़र्द है। आज हमारे यहाँ बहुत नेक लोग, यानी शरीफ शुरफा लोग, जिनको हम किसी भी सोसाइटी के दूसरे तबके पे ला सकते हैं, वो भी टीवी, उसके अंदर आने वाले एड्स, उसके अंदर नाचती फुदकती तस्वीरें, फैशन ज़्यादा औरतें, वो चाहे खाने के एड्स हैं या पीने की चीज़ें हैं, कोई बुरा ही नहीं मनाता। एक तस्लीम कर लेने वाली कैफियत नहीं लगती? किस तरह घरों के अंदर उसके ज़रिए से बेहयाई आई, बहू बेटियों की सोच बदली, लड़कों की नज़रें प्ल्यूट हुई। आप देखिए, कभी इमेजिन करें कि एक फैमिली है पूरी की पूरी बैठी, जिसमें बूढ़ा बाप भी हो सकता है, जवान बेटी भी है, भाई भी बहन है। अब एक ड्रामा चल रहा है, चलें खबरें चल रही हैं, आप जो भी ले लें, सबसे ज़्यादा जो चीज़ आप महसूस करते हैं कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर कम गुना का एहतमाल है, वही ले लें। बाज़ लोग कहते हैं एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, मुझे लगता है आजकल के तो एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा बुरे हैं फिल्मों से भी। किस्सा मुख से कोई भी एक चीज़ ले लें आप उसको कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखें। टुकर टुकर जब आप उसको देख रहे हैं, पलके भी छपकना भूल जाते हैं। बुरा क्यों नहीं लगता? इसलिए कि वजत ना बा ना लहा आबिदीन। कई लोग बाहर जाके सिनेमे में फिल्म देखना बुरा महसूस करते हैं, घर में सारा दिन टीवी ऐसे ही बेकार चल रहा है तो चल रहा है। और मैं तो देखती हूँ कि लोग टीवी को देखने के लिए नहीं चलाते, आदतन भी चलाते हैं। नमाज पढ़ रहे हैं ना, तो टीवी चल रहा है, बस आवाज़ बंद कर देंगे, वो नाचती फुदकती तस्वीरें दिख रही हैं। इसी तरह से जब सोच बदलती है ना, तो यही हाल होता है। लोग मन घड़त तरीक़ों से इबादत करते हैं और उन चीज़ों के आगे बग़ैर सोचे समझे बैठते हैं। अच्छा, ये तो हमने एक इसका माशरती पहलू देखा, क्या आज के दौर में भी कोई इस तरह से बैठते हैं? बिल्कुल बैठते हैं इबादत की गरज से। वो कैसे? आज भी मुसलमानों में कुछ गिरोह ऐसे हैं कि जो अपने शेख, अपने पीर, अपने बुज़ुर्ग की तस्वीर रख के उसके आगे बैठते हैं। लोगों ने घरों में ऐसी तस्वीरें लटकाई होती हैं और उन्हीं के घर वालों की गवाही है कि सुबह काम पे जाने से पहले थोड़ी देर वो इनकी तस्वीर के आगे आते हैं, फिर पता नहीं क्या दुआ मांग के फिर जाते हैं। ये भी शिर्क की एक किस्म है। शिर्क किसी भी रंग में आ जाए, याद रखिए कि वो काबिले कबूल नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने शबीहें लगाई हुई हैं, कोई पंजा लगा लेता है, कोई और कुछ नहीं, तो आज के दौर में तो इसकी कई चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ भी इस तरह की मन घड़त चीज़ें बनाकर लोगों को असल दीन से रोका गया। काला, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, لقد كنتم انتم وآباؤكم في دلال مبين. بلا شبہ مبتلا رہے ہو تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں. یہ تھی رشد کی دلیل. بالکل شرم نہیں, کوئی جھجک نہیں, سلیقہ ہے, جرت بھی ہے, اور اب اس بات پہ وہ جو بات کریں گے اس پہ صبر بھی ہے, اور پھر اللہ سے توکل کی امید بھی ہے. پورے کے پورے رشد کے اندر مبتلا ہیں. کہنے لگے مجھے تو لگتا ہے کہ تم اور تمہارے باپ دادا جو ہو وہ تو گمراہیوں میں مبتلا ہو, اور دلال نہیں ہے بلکہ دلال مبین ہے. کھلی آنکھوں سے جو چیز شرک یا بے حیائی لگے وہ انسانوں کو بالکل شرک نہیں لگتی یا بے حیائی نہیں لگتی, کیونکہ ساری کرتے آئے تو ہم بھی کر لیتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں. آج بھی لوگ قبروں کے اوپر بیٹھنے کو, مجاور بننے کو, پیروں کے مرید بن کے بیٹھنے کو, تبرکن ان کی تصویروں کو, ان کے امام زامن کو, ان کے پھولوں کو گھروں میں لٹکانا کوئی برا نہیں سمجھتے. کہا کہ ایسی باتیں کرتے ہو, مجھے تو لگتا ہے کہ تم بالکل ہی زیادہ بھٹک چکے ہو, سیدھے راستے سے بہکے ہوئے ہو. اب اس بات کو سن کر آگے ذرا جواب سنیے قوم کا, اور اس کو لیجیے آج کے تناظر میں. جب ہم کسی کو برائی سے روکتے ہیں تو ہمیں بھی عموماً آج یہی جواب ملنے کی توقع ہوتی ہے. قالو, انہوں نے کہا, اجئتنا بالحق کی, اچھا جی تم لے آئے ہو ہمارے پاس کوئی سچی بات, ام انت من اللاعبین, یا پھر تم صرف دل لگی کر رہے ہو. وہ قوم جو ایک لمبے عرصے سے بتوں کو اپنا معبود, اپنا کارساز, اپنا حاجت روا سمجھے ہوئے تھی, ان کو اس عقیدے کی صداقت کے معاملے میں ذرا سا شک اور تردد بھی پیدا نہیں ہوا تھا. کیوں؟ کہتے ہیں کہ انسان جو بات سنتا ہے نا, سنتے سنتے اس کو سچ سمجھنے لگتا ہے. آپ کسی ایک شخص کے بارے میں کوئی ایک بات سنیں گے, آپ کہیں گے نہیں نہیں ایسی اڑا دی کسی نے, دوسرا کہے گا, آپ کہیں گے لگتا ہے یہ پہلے نے اس کو بھی بتا دی. لیکن تین چار چھ لوگ ایک ہی بات کہتے ہوئے دکھیں گے نا تکرار, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کہیں گے نہیں ضرور کوئی بات ہے. یہی بات ادھر ہے. اتنا زیادہ شرک عام ہو چکا تھا کہ سنتے سنتے ان کو یقین ہو چکا تھا کہ ہماری یہ بت پرستی سراسر حق ہے, اور ابراہیم جو بات کہہ رہے ہیں یہ سراسر باطل ہے. آج بھی ایسا ہے, ہر دور میں دیکھیے جہاں حق آتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہے, پہلے کہتے تھے یہ سابی ہے, آج کے دور میں کہتے ہیں وہابی ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن کھول لیں, سراسر شرک کے دلائل آپ کو ملیں گے. جو چیزیں لوگ کرتے ہیں اس کا شرک کھل کے دکھتا ہے. حدیث کھول لیں, اس میں شرک ہے. ان کو وہ شرک کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے چلتے چلتے عادت ہو گئی, ان کو لگتا ہی نہیں برا. اس کو اس طرح امیجن کریں نا کہ کوئی بہت گندگی پھیلا کے بیٹھتا ہے, باہر سے آنے والا شخص ایک نظر میں دیکھ کے کہے گا کہ بہت گندا ہے گھر, لیکن جو لوگ اس گھر میں رہتے ہیں نا, حیرت مجھے ان مردوں پہ ہوتی ہے جو وہاں آتے ہیں, دن میں ایک آدھ دفعہ تو آتے ہی ہوں گے نا, جاتے ہوں گے آتے ہوں گے, ان کو بھی نہیں احساس ہوتا کہ گندگی ہے. ان کو بھی جوتا روز ڈھونڈنا ہی پڑتا ہے کہ کہاں کس پلنگ کے نیچے ہوگا, ان کو عادت ہی نہیں رہی. کیوں؟ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ چیز ایسے ہی ہوگی. جب ہم برائیوں کو, گندگی کو, شرک کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا, تو اس کا بالکل یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمیں سراسر وہی ٹھیک لگتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ کس دین کی بات لے آئیں. یہ جواب ہے اس بات کا جو لوگ عموماً کھیل کود کے طور پہ پیش کرتے ہیں. جہاں کوئی حق بات کرے کہتے ہیں مت سنو, یہ تمہارے عقائد بگاڑ دے گا, یہ تمہاری سوچ بدل دے گا, تمہاری برین واشنگ کر دے گا. قوم کو بھی بالکل حیرت ہوئی, کہیں گے تم تو کوئی دل لگی کر رہے ہو. یہ جو لاعبین ہے نا, یہ لاعب کی جمع ہے, کھلاڑی کو کہتے ہیں, پلیئر کو. لام عین با, کھیل کود عموماً بے مقصد ہوتے ہیں, ٹائم ویسٹرز ہوتے ہیں. ہر دور میں کھیل کو کوئی پسندیدہ لفظ نہیں دیا گیا, مثلاً جیسے جوا ہے, سٹے بازی ہے, عموماً اسی کی طرف چلتے ہیں, غیر سنجیدگی کی علامت ہوتی ہے. اور کھیل کے ساتھ ہمیشہ بچوں کا تصور آتا ہے. جب بڑے لوگ بھی بہت زیادہ کھیلنے لگے نا, تو وہ بندے کے فارغ الذہن ہونے کی دلیل بنتی ہے. انہوں نے حضرت ابراہیم کی اس بات کو کھیل کیوں کہا؟ آپ ذرا سوچیں, ابھی انہوں نے کہا تو کچھ ہے ہی نہیں, صرف یہی کہا نا, تنقید کی تھوڑی سی ان کے طرز زندگی پہ, ان کے لائف سٹائل پہ, تو کہنے لگے کہ آپ تو کھیل رہے ہیں. کیونکہ ان کو غیر سنجیدہ زندگی بسر کرنے کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ جب آپ ان کو کسی سنجیدہ کام میں لگائیں تو لوگ اس کو کھیل سمجھتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں امت مسلمہ کو بیکار رہنے کی عادت ہو گئی ہے. دن میں تین بار کھانے اور تین دفعہ شاید چائے پینے اور دو دفعہ سنیکس کھانے کی عادت ہو چکی ہے. और सारा दिन घर के काम और नमाज रोज़ा हज इसी को वो ज़िंदगी का एक असूल बना के बैठे हैं। आप जब उनको कहते हैं ना कि आप एक मकसद के लिए जिएं, सुबह से शाम तक आएं, कोई भी नहीं कहता वैसे, लेकिन अगर किसी को कहा जाए कि आप संजीदगी से कुरान की तालीम लें, फिर पढ़ें, फिर टेस्ट दें, फिर असाइनमेंट्स करें, तो लोग बाज़ दफ़ा सोचते हैं कि आर यू सीरियस, यानी ये बिल्कुल वही स्टाइल है, आर यू सीरियस, ये हो सकता है। इसी तरह ये जुमला मैंने कुछ लोगों से उस वक़्त भी सुना। कुछ ऐसे लोग थे कि जो कहते थे घर से टीवी निकाल दो। कुछ लोगों की बात सुना रही हूँ, मैं अपनी नहीं बता रही। एक मिशन पे उन्होंने ये निकाला, बात निकली कि भाई घरों में बहुत बेहयाई आती है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, सबक नहीं याद करते, टीवी ख़त्म करो। तो उन्होंने जहाँ जाके ये बात की ना कि भाई घर में टीवी है, इसका क्या मकसद है, इसके फ़वाद के, इसके नुकसान के, मेरा तो ख्याल है कि ये घर में नहीं होना चाहिए, तो लिटरली लोगों ने उस चीज़ को लिया कि आर यू सीरियस, क्या ये पॉसिबल है कि आज के दौर में घर में टीवी ना हो और इंसान फिर भी कामयाब रहे। तो आप देखिए कि आप तो रोज़ शौक़ से पढ़ने आते हैं ना, कुछ लोगों को आपका ये पढ़ना बढ़ाना खेल लग रहा है। बड़े तपाक से लोग कहते हैं, मैं तो लोगों की फेस रीडिंग करती हूँ, कहते हैं जी माशाल्लाह नमाज 5 वक्त पढ़ लेते हैं, रोज़ा रख लेते हैं, घर साफ़ करते हैं और अपने अपने काम करते हैं, कोई ग्रज, कोई गिल्ट भी नहीं है दिल में कि हमें पढ़ना चाहिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बिल्कुल इसी तरह का रवैया इख्तियार किया, लिहाजा कहने लगे कि हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे, हमें तो ये बात बिल्कुल खेल लगती है जो आप कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बात पे उलझने की बजाय क्या कहा, काला बर रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दिल्लज़ी फ़तरहुन्ना, आपने फरमाया मैं दिल लगी नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारा रब वही है जो आसमानों और ज़मीन का रब है, जिसने सबको पैदा फरमाया, व अना अला ज़ालिकुम मिनश्शाहिदीन, और मैं इस सदाकत पर गवाही देने वालों में से हूँ। उन्होंने उनकी सोच बदलने की कोशिश की कि देखो तुम सोचो, तुम अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से कामयाबियों की तरफ नहीं ले जा सकते, ये अल्लाह की ज़ात है जो ये सब कुछ करेगा। आप फील कर रहे हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उलझना नहीं चाह रहे। मेरे इमेजिनेशन में ऐसे ही आता है कि टॉक शो हो रहा है, एक तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे, एक तरफ कौम के करता धरता लोग बैठे हुए, और बिल्कुल स्पार्ट लहजे में सही तरीके से उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं, ना शर्मिंदा हो रहे हैं, ना कोई बहुत ज़्यादा उनकी बात को मानना चाह रहे हैं। और कौम भी कुरेद कुरेद के सवाल करती है, और वो उसके जवाब जो है वो बड़े नपे तुले अंदाज में देते हैं। तौहीद की तरफ दावत दे दी, और जहाँ अल्लाह ताला के लिए लफ्ज़ रब आने का बहुत बड़ा मकसद है, और वो कहे कि रब है जो तुम्हें खिलाता है, जिनके आगे तुम बैठे हो वो तुम्हें क्या देते हैं, तुम्हारे लिए वो किस किस्म की बातें करता है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं देता, वो तो सभी कुछ उसके हाल में है। आज भी अगर आप देखें कि किसी को आप खुराफात से रोके ना, तो अमूमन लोग इसी तरह से जवाब देते हैं, पहले बाप दादा की बात करते हैं, फिर कहते हैं हमारी रसूमात हैं, हम क्या करें, हम नहीं छोड़ सकते, हमारे लिए मुमकिन ही नहीं, फिर उनको ये बातें मजाक लगने लगती हैं, और बिल आखिर फिर वो थोड़ी सी सख्ती पे आते हैं जो कि अगली आयतों में हमें दिखेगी। वतल्लाही और बखुदा लअकीदन्न असनामकुम, मैं बंदोबस्त करूँगा तुम्हारे माबूदों का, यानी मैं अब इनकी खूब खबर लूँगा। कब, बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन, जब के तुम पीठ फेरते हुए चले जाओगे। ये जुमला कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दबी ज़ुबान से कहा, कहा अच्छा अब नहीं मानते ना तो ना मानो, हम तुम्हारे लिए बात करेंगे बाद में, हम ज़रूर कुछ ना कुछ अब इसकी अमली कोशिश करते हैं। अब ज़रा आप अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबलीग को एक लहजे में देखें ना, तो सबसे पहले देखिए कि उन्होंने ख़ुद हक़ को पहचाना, फिर आवाज़ के साथ कहकर ज़ुबान से उनको रोका, जब लोग ज़ुबान से ना मानेंगे तो दिल में अब नियत कर ली कि अब कोई प्रैक्टिकल स्टेप लूँगा। यही है तबलीग का ख़ूबसूरत तरीका। और कहते हैं कि ये बात बस उन्होंने इसी तरह कही कि उन्होंने खुद ही सुनी होगी, ये इरादा होता है, क्योंकि कईद का लफ्ज़ जो होता है ना, ये इरादा करने के लिए भी आता है, लेकिन बुरा इरादा, गोया कि अब उनकी नियत को अल्लाह ताला ने पेश कर दिया कि अब उनका ख्याल था कि मैं कुछ करूँगा इनके बारे में नहीं। इससे एक अमल की बात निकलती है कि बस दफ़ा ज़ुबान से किसी की बुराई को बुरा कहते रहे ना कोई माने ना, तो फिर मुनासिब तरीके से एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। और बाज़ दफ़ा जो लोग बातों पे कहने पे आगे नहीं 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 ऐसा ना करना, लेकिन जब आप वो काम कर लेते हैं ना तो दुबक के बैठ जाते हैं, वो कहते हैं अब छोड़ो, ठीक है अब कर लिया तो अब हम इनके मुँह क्या लगे। कभी भी कोई नेकी आपने करनी हो ना, खास तौर पे जिसमें मुआशरे के रस्म व रिवाज टूटे, तर्ज़ ज़िंदगी चेंज हो, कर ले। सिंपल सी बात है, कर ले। मसलन मैंने कुछ ख़वातीन को देखा है, बस हमने अब पर्दा करना है, बस हमने अब शरई पर्दा करना है, पर्दा करने लगे, मियाँ को भी बता रही हैं, सास को बता रही हैं। अब नतीजा वो आगे से कहते हैं, खबरदार तुमने किया तो। वो पहले इतना ज़्यादा अपने खिलाफ़ अपने इर्द गिर्द क्यों सा बर्पा कर लेती हैं ना, आगे से ज़ाहिर है कि धमकियाँ देते हैं या कोई भी बड़ी बात करते हैं, तो वो फिर हिम्मत ही नहीं करती। मुझे किसी एक औरत ने कहा कि मैं कई साल से कोशिश कर रही हूँ पर्दा करने की, लेकिन मैं जूँ ही बात घर में छेड़ती हूँ तो वो मेरे मियाँ तो बहुत गु़स्से में आते हैं, और सास और ये वो, मैं क्या करूँ। मैंने कहा, क्यों आपने शोर मचाया? कहती, नहीं, मैं ज़हनी तौर पर उनको तैयार करना चाहती हूँ ताकि मैं जब करूँ तो फिर इनको मुश्किल ना हो। मैंने कहा, बिल्कुल गलत कर रही हैं। कहती, क्या करेंगी? मैंने कहा, मैंने अभी नियत की है ना, मैं अपने मियाँ के साथ कहीं जाऊँगी, मैं सर पे दुपट्टा तो लेती हूँ ना, तो मैं उसको यूँ हल्का सा कर लूँगी, ढीला डाला। वो सोचेंगे इसने ऐसे ही गलती से हो गया वह, थोड़ा सा बातों बातों में अगली दफ़ा, यानी स्टेप बाय स्टेप मैं इसको थोड़ा सा आगे से ऊपर से लूज़ कर लूँगी, कभी इस तरह कर लूँगी, कभी जहाँ लोग नहीं होंगे मैं ऐसे सीधा भी कर लूँगी, फिर जब लोग आएंगे वो खुद ही देख लेंगे, वो बाद में वो मुझसे पूछेंगे ये क्या है, तो आपके नहीं बस मैं कोशिश कर रही हूँ, आप कर लीजिए। और यकीन करें कि जब हम कोई स्टेप ले चुके होते हैं ना, ये जरूरत कम लोगों में होती है कि हाथ बढ़ा के खींच दें, लेकिन बातों से बातें करने वाले बहुत सारे होते हैं। इसी तरह लोग शोर मचाते हैं, मैंने अब शादियां ऐसी करवानी है, मैंने अपने बच्चों की शादियों में ये नहीं करना, वो नहीं करना, मैंने अब तस्वीरें नहीं खिंचानी, मैंने अब टीवी नहीं रखना। क्यों आप इतनी बड़ी धमकियां देते हैं? आप कर लीजिए, कोई कुछ नहीं करेगा। अमल करना है उसके लिए अल्लाह से रुश्त मांगिए और बस चल पड़िए। हाँ, यहाँ एक बड़ा काम का नुक्ता है, कब करूँगा? जब तुम गए हुए होगे। ये भी एक बहुत ही काबिले गौर चीज़ है। आप अपने घर में को चेंज करना चाहें, कोई ऐसी चीज़ बच्चों की, मियाँ की, उस वक्त करें जब वो मौजूद ना हो, ताकि हो सकता है शुरू में वो नोटिस ही ना लें, उनके सामने आप कहेंगे ना लाएं मैं ये करने लगी हूँ, तो बड़ी लड़ाई हो जाएगी। हम बस दफ़ा बेमौका जो वार करते हैं ना, उसकी वजह से घर का माहौल ख़राब हो जाता है। अल्लाह से मदद मांगे, दुआ करें, कर लीजिए। और तल्लाही का लफ्ज़ में जो ता है ना, ये कसम की है, इसको कहते हैं ता कसमिया। लाम जो है ये भी ताकीद की है, और आगे अकीदन्ना का नून जो है ये भी शिद्दत का है। इससे आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अज़्म का पता चलता है। ये अज़्म होता है ना तो कोई आपको रोक नहीं सकता। हमारे इतने अज़्म पक्के नहीं होते, इसीलिए फिर हम रास्ते में रोक लिए जाते हैं, तोड़ लिए जाते हैं। और असनाम जो है ये सनम की जमा है। सनम कहते हैं धात से बने हुए बुतों को, जैसे पीतल के, लोहे के। वसन जो होता है ना, वाओ था और नून, ये भी कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ लफ्ज़, ये लकड़ी के बुतों के लिए आता है। अब आसान काम नहीं था, पूरी बिरादरी से, पूरी सोसाइटी से टक्कर लेने वाली बात थी। जब लोग आंखें बंद करके लोगों के पीछे चलते हैं तो किसी एक को कोई काम करना मुश्किल लगता है। और सबसे बढ़ के देखिए कि हकूमती अकीदा भी यही था, हकूमत भी उस दौर की जो थी वो बुत परस्ती। पता क्या चला कि किसी काम को करने के लिए पहले प्लानिंग कर लीजिए, जज्बातियत से पाक हो जाए, जो दिल में आया कर लीजिए, और कोशिश करिए कि सामने टकराव ना हो। जब वो गए होंगे, मुदबिरीन, मुदबिर की जमा है, दुबर से पीछे होंगे गए हुए, तो फिर हम ये काम कर लेंगे। अब यहाँ एक छोटा सा आपको तकाबल करवाती हूँ, जो पीछे हज़रत मूसा के किस्सों में हम देख चुके कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना मौजज़ा दिखाना था सांप बनने का, उसके लिए यौमुल ज़ीना का इंतखाब किया, सब लोग सामने थे, पढ़ चुके हैं ना, याद आ गई बात। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल तन्हाई का इंतखाब क्यों किया? वजह क्या है? इसलिए कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हक़ की ताकत दिखाना चाहते थे, और आप चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैगाम पहुँचे। नोट कीजिएगा ये बात, इस्लाम की कोई ताकत दिखाना चाहे ना, यानी मैसेज कन्वे हो, तो ज़्यादा लोगों का इंतखाब करें, लेकिन जब लोगों की बुराइयों पे चोट पड़े, बिल्कुल अपोजिट, तो फिर तन्हाई में बात करें। बात वाज़ेह? मतलब आप किसी को किसी एक अच्छी खूबी की बात कहते हैं, मिसाल है नमाज़ पढ़ना, ये हमारे यहाँ आम फहम नेकी है, सबके बीच में आप बात करें, लेकिन आप किसी प्रैक्टिकल गुनाह को छुड़वाना चाहते हैं, मतलब प्लकिंग की बात करते हैं, या आप कोई और सूद की बात करते हैं, तो उसमें अमूमन वन ऑन वन बेस बात ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि बुराई की भी एक ताकत होती है। आप बड़े मजमे में सूद के खिलाफ बात करेंगे ना, तो एक एक जुमला बोलेगा, दूसरा बोलेगा, और एक मिनट में भी भात भात की बोलियाँ लोग बोलेंगे जो सूद का काम करते लेते देते हैं। इसके बरक जब किसी एक पर्सन से आप बात करेंगे ना, तो पहली बात है उसके दिल पर सच का रोब होगा, खामोश होगा। फिर दूसरी बात है उसके पास इतने दलाल नहीं होंगे, वो खामोशी से सुन लेगा, आप अपनी पूरी बात कन्वे कर लेंगे। इसलिए याद रखें कि अमर बिल मारूफ बरमला किया करें मौके के मुनासिबत से, लेकिन नहीं अनिल मुनकर के लिए बहुत समझबूझ से काम लें। अपने बच्चे को अच्छी बात की बात करनी है, उसके दोस्तों में भी करें, उसके साथ भी करें, सबको जमा के सीगे में इस्तेमाल करें, वट एवर। लेकिन जिस वक्त आपने अपने बच्चे की किसी बुराई को मेंशन करना है ना, तो तन्हाई में कंधे पे हाथ रख के, बालों में उंगलियां फेरते हुए, प्यार से उसका सर गोद में रख लें, फिर बात करें, मेरे बच्चे ऐसा ना कर, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं तुझे ऐसे देखूं। इस तरह से आप देखेंगे कि इंसान की फितरत जो है ना, वो उभरती है। सबके बीच में जब टोकते हैं ना, तो अना उभरती है, और अना तो सोया हुआ शेर है, बाज़ दफ़ा बिफड़ता तो अपने ही मालिक को खा जाता है। इसीलिए जब हम अपने ही प्यारों को उन्हीं के खैर की बातें बता रहे होते हैं ना, तो वो बाज़ दफ़ा हमारे ही आगे अकड़ने लगते हैं, क्योंकि हमने उनकी अना को बेदार कर दिया।